ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்ரீமத் பாகவதம் நவமஸ்கந்த அத்தாய் சொல ஸ்லோக் சங்கியா ஏக் லேக்கர் பாஞ்ச் தக் ப்ரோபாட் நீ ஃபிர் அனுவாத் படுங்க ஒரு சை ஸ்லோக்கோம் சபி எக் சாத் பாட் கரங்கே. அனுவாத் சுக்தேவ கோஸ்வாமி கா ஹே மஹாராஜ் பரீட்சே ஹே குருவம்சே, ஜப பகவான் பரசுராம் கோக்கே பித்தே ஆதேஷ் தியோன துரந்தி கே உசை ஸ்வீகார ஐசாஹி ஹோகா. ஏக வர்ஷ தக் தீர்த்தலோ கி யாத்திரா கரத்தே ரே. தத்பாத் அப்படி பித்தக்கே ஆசிரமே லோட் ஆய. தூசரா ஸ்லோக கா அனுவாத். एक बार जब यमदग्नि की पत्नी रेणुका गंगा नदी के तट पर पानी भरने गई तो उन्होंने कमल फूल की माला से अलंकृत तथा अप्सराओं के साथ गंगा में विहार करते गंधर्वों के राजा को देखा. तीसरा श्लोक का अनुवाद. यह गंगा नदी से जल लाने गई थी, किंतु जब अपने गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते देखा तो वह उसकी ओर उन्मुख सी हुई और यह भूल गई थी कि अग्निहोत्र का समय बीत रहा है. चतुर्थ श्लोक का अनुवाद. तत्पश्चात यह समझ कर कि यज्ञ करने का समय बीत चुका है, रेणुका अपने पति द्वारा शापित होने से भयभीत हो उठी. अतः जब यह लौट कर आई तो यह उसके समक्ष जलपान रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई. पंचम श्लोक का अनुवाद. मुनि जमदग्नि अपनी पत्नी के मन के पाप को समझ गए, अतः वे अत्यंत कुपित हुए और अपने बेटों से बोले, पुत्रों इस पापिनी स्त्री को मार डालो. लेकिन बेटों ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया. छठवां श्लोक आइए सभी एक साथ पाठ करते हैं. रामः संचोदितः पिता रामः संचोदितः पित्रा हत्रुन माता सहावधेत மாத்திரேத் பிரபாவக்யோ முனே சம்யக் பிரபாவக்யோ முனே சம்யக் சமாதே ரமஹ சஞ்சோதிதஹ பித்ரா ஹாத்ருன் மாத்ரா மஹாவதேத் பிரபாவக்யோ முனே சம்யக் சமாதே ஸ்தப சஞ்சசஹ. அனுவாத் ததா தாத்பர்ய பை ஹிஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஸ்ரீ பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய் ஹோ. அனுவாத். தப் ஜமதக்னி நே அப்னே சப்சே சோட்டே புத்திர பரசுராம் கோ அவஜ்ஞாக்காரி பாயோ ததா मानसिक रूप से पाप करने वाली उसकी माता को मार डालने की आज्ञा दी। परशुराम ने तुरंत ही अपनी माता तथा भाइयों का वध कर दिया, क्योंकि उन्हें ध्यान तथा तपस्या द्वारा अर्जित अपने पिता के पराक्रम का ज्ञान था। तात्पर्य, प्रभावज्ञ शब्द महत्वपूर्ण है। परशुराम वो अपने पिता के पराक्रम का ज्ञान था, अतएव उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने की हामी भर दी। उन्होंने सोचा कि यदि वे उनके आज्ञा नहीं मानते तो वे श्राप दे देंगे, किंतु आज्ञा पालने पर वे प्रसन्न हो जाएंगे और उनके प्रसन्न होने पर परशुराम अपने माता तथा भाइयों को वर मांगकर पुनः जीवन दिला सकेंगे। उन्हें इसका विश्वास या इसलिए उन्होंने अपनी माता तथा भाइयों का वध करने की हामी भर दी। कलयुग में अगर ऐसे हम करें तो बड़े अनर्थ की बातें होगी, परंतु ये हमारा शास्त्र है। सर्वो व्यासोचिष्ठ जगत सर्वम, ये जगत जो है ये व्यास भगवान का उचिष्ट है। जितने ही पुराण साहित्य आप लोग पढ़ते हो ये सब व्यासदेव का ओरिजिनल से कुछ ना कुछ ले करके वही और रूप से लिखा हुआ है। व्यासोचिष्ठ जगत सर्व, ये जगत व्यासदेव के ही उचिष्ट है। जितने ही ज्ञान पुराण साहित्य इत्यादि जो भी लिखे हैं ये सब व्यासदेव से आया हुआ है। और जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा है ये 18 पुराणों का सारांश है। जैसे दूध में ही मक्खन भरा है पर हमें दिखता नहीं, जब दूध को दही बनाया जाए, दधि को भंड में भर करके मंथन कर दिया जाए उससे मक्खन निकलता है, और मक्खन को जब हम आग के ऊपर बैठ के घी बनाते हैं वो सर्वोपरि उत्तम स्वाद है। ऐसे ही अष्टादश पुराण को लिखने के पश्चात द्वैपायन व्यासदेव स्वयं ही दुखी थे, उनको संतोष नहीं था। नारद मुनि आने से विनम्रता से व्यासदेव पूछते हैं, गुरुदेव कृपा करके बताइए मेरा मन संतोष क्यों नहीं है। तो व्यासदेव जी, नारद जी बोलते हैं, व्यास तुमने इन अष्टादश पुराण में खिचड़ी पका दिया है। भगवान की प्रेममयी लीला का वर्णन नहीं किया, इसलिए तुम प्रेममयी लीला का वर्णन करो, तब वो श्रीमद् भागवत लिखते हैं। तो ये अष्टादश पुराण है क्या? भद्वयः मद्वयः ब्रत्रयः और व चतुष्टयः अ ना प ली ग कु स्क दि पुराणादि पृथक पृथक। ये 18 पुराण है। प्रथम कहा भद्वय, भ में भागवत और भविष्य पुराण, ये दो है। और म में मत्स्य पुराण मार्कण्डेय पुराण, ये दो है। व्र त्रय ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये तीन है। और व चतुष्टया वामन पुराण वायु पुराण वामन वायु एनिमल विष्णु पुराण और वराह पुराण, ये चार पुराण बाका। अमे अग्नि पुराण, नामे नारद पुराण, पमे पद्म पुराण, लीमे लिंग पुराण, गमे गरुड़ पुराण, कुमे कुर्म पुराण, गु स्क स्क में स्कंद पुराण। ये 18 पुराण की सारांश जो है वो श्रीमद् भागवत की कथा है। और ये भागवत है क्या? ना भाकारात् भवेत् भाव, गकारात् ज्ञान उद्भव, बकारात् ब्रह्मरूपं च, तकारात् तत्वदर्शन। अर्थात श्रीमद् भागवत भाव भक्ति ज्ञान तत्व और ब्रह्म स्वरूप का समावेश ग्रंथ है। ये ब्रह्म स्वरूप क्यों है? ना ये वांग्मय मूर्ति है, भगवान के अर्च विग्रह को जब हम पूजा करते हैं जो फल जीव को प्राप्त हो जाए, श्रीमद् भागवत महाग्रंथ का यदि हम पूजा करें अर्चना करें इक्वल राइट। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत साक्षात गोविंद है, किंतु ये वांग्मय मूर्ति के रूप में बैठा हुआ है। और श्रीमद् भागवत उस मूर्ति से भी महान है, इसलिए क्योंकि जिस प्रकार मां बताती है हमारा पिता कौन है फिर हम पहचानते हैं, श्रीमद् भागवत ये स्पष्ट कर देती है जे भगवान कृष्ण को हम कैसे पहचाने। ब्रहा पीडम नट बर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वाश कनक कपीशम वैजयंतीं च माळम रंध्रान वेणोर अधर सुधया पुरयन गोपवृंदे आवीषद गीत कीर्ति वृंदावनम प्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये भगवान की रूपों का वर्णन है दशम स्कंद भागवत। यदि ये रूपों का वर्णन व्यासदेव जी नहीं करते तो हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचानते। क्या कहा? ना ब्रहा पीडम न टवर बपु, जिनके सर के ऊपर मयूर की पंख हो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र मयूर की पंख को सर के ऊपर क्यों धारण किया? क्योंकि मयूर जो है वो अखंड ब्रह्मचारी है और भगवान श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। जब उत्तर दिशा में आकाश में बादल भर जाता है, धूप नहीं हो, काले बादल छा जाए, घने बादल, तो मयूरी मयूर को नचाता है और मयूर नाच नाच के ऐसे थक जाता है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। अगर मयूरी उस आंखों से आंसू को पी ले तो वो मयूर को जन्म देती है। अगर आंसू नीचे गिर जाए फिर मयूरी उसको पी ले तो मयूरी की जन्म देती है। इसलिए मयूर फिजिकल संभोग नहीं करता, इसलिए भगवान अखंड ब्रह्मचर्य की पतिक होने के कारण मयूर के पंख को सर के ऊपर धारण किया, तभी वो कृष्ण भगवान कहलाए।
और विदेश में आप जाओ बा आप ये बड़े बड़े सिटी में आप रहते हो, जब आप ड्राइव करते हो आप क्या देखते हो, ग्रीन लाइट हो गया। ग्रीन लाइट मतलब चलो, रेड लाइट मतलब रुको, ग्रीन हो गया तो चलो, राइट। तो भगवान इस नील कलर को लेकर के सर के ऊपर पुकारते हैं, यदि तुम मेरी शरण में आओगे कोई बंधन तुम्हें नहीं रुक सकता, आओ, इसलिए मैं खड़ा हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम भगवान स्वयं, अहम त्वम तुमको सर्व पापेभ्यो सभी पापों से, यदि किसी चीज को छोड़ने से पाप लगता हो, मैं वचनबद्ध हूं, मैं वचन देता हूं, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मा शुचः, चिंता मत करो। कौन इसे बोलेगा, कौन शास्त्र में इसे लिखा है, कौन धर्म में इसे लिखा है, केवल श्री कृष्ण ही ऐसे डिक्लेरेशन दे सकते हैं। भगवान ने कहा सभी धर्म को त्यागो और एकमात्र मेरे शरण में आओ। तभी मयूर पंख उस कलर को लेके खड़े हैं, जो मेरे पास आने वाले व्यक्ति को कोई रुक नहीं सकता। जी नरेंद्र मोदी का लेटर आपको आ जाए, जे मुझे मिलने आओ, रास्ता में कोई रुक सकता है, आपको रुक सकता है नहीं ना। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण से किसकी संबंध हो जाए, कोई देवता देवी उस भक्त को कष्ट परीक्षा जरूर ले सकता है, वो डिपार्टमेंट है, वो बात अलग है, परंतु रुकने का समर्थ माया को भी नहीं है। आखिर माया भी सरेंडर कर जाती है। माम वही प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते, जो मेरे चरण में शरणपन्न हो जाए वो माया को ऐसे ही अतिक्रम कर जाता है। कैसे, न समा श्रिता ए पद पल्लव प्लवं महत् पदम पुण्ययशो मुरारे भवं बुधिं वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदां नोतेषां। जब कोई जीव अनायास होकर के भगवान की चरण रूपी नौका का सहारा ले ले, वो कभी भवसागर में डूबता नहीं है। भगवान किसी को धोखा नहीं देते, भगवान सभी का स्रोत है, वो सभी के हित चिंतक है, और व्यक्ति उस स्थान को प्राप्त हो जाता है शरणापन्न हो करके, वो नौका का सहारा ले करके, जहां पर पग पग में विपद नहीं है। भौतिक दुनिया में एक पैर हम गुराए उठाए तो दूसरा पैर गिरेगा, वो फिसल जाएगा कि मचक जाएगा पैर, हम नहीं जानते, किंतु उस धाम में पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, वहां पर विपद नहीं है, केवल आनंद है, पूर्ण आनंद है, जीव प्राप्त हो जाता है। तो ओ श्रीमद् भागवत की कथा में, अष्टादश पुराण में परशुराम जी की चरित्र विस्तृत रूप में वर्णन है, पर सारांश के रूप में कुछ कथा श्रीमद् भागवत में जो जो कथा लिखी गई है वो सारांश में संक्षेप में लिखी गई है। तो उनमें से परशुराम जी अपनी मातृवध किए और भातृवध भी कर डाले, पिताजी के कहने से, क्योंकि उन्हें मालूम था पिताजी क्या करने में समर्थ है। इस चरित्र में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जो नामकरण संस्कार करते थे गार्गाचार्य थे, गार्गाचार्य जी की कथा बड़ा प्रमुख है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ जे उन दिनों में, ये तो परशुराम जी तो भगवान स्वयं थे, पर ब्राह्मण भी कितने तेजस्वी और पराक्रमी हुआ करते थे। गार्गी गार्गाचार्य की पत्नी, गार्गाचार्य की पत्नी हमेशा यही सोचती थी ये मेरे पति है, कहावत है ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो गार्गी कभी इतना सीरियसली अपने पति को समझती नहीं थी। तो एक दिन गार्गाचार्य जी सोचते हैं ये मेरी पत्नी है, इसके साथ मैंने जीवन बिताया पर ये कभी मुझे समझी ही नहीं। आज एक समय आया मैं मेरी पत्नी को ये समझा देता हूं मैं हूं को। तो प्रातः समय में ब्राह्मण जगता है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, तिलक इत्यादि करके फिर गायत्री जप इत्यादि करते हैं। ब्राह्मण की तीन गायत्री तो आवश्यक है, प्रातः गायत्री, मध्यान्ह गायत्री और सायं गायत्री। किंतु आज गार्गाचार्य जी तो जगे प्रभात समय में, पर गार्गाचार्य जी कहते हैं गार्गी बोले क्या स्वामी क्या हुआ? बोले आज मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले तुम यहां बैठो और तुम्हारा सर, तुम्हारा गोदी में सर रख करके मैं सोना चाहता हूं। बड़ी बड़ा अद्भुत बात है। अरे सवेरे का समय है, फिर घर की जो नित्य कृत्य है घर का वो कैसे होगा? मैं बैठ जाऊंगी आप गोदी में सर रख के सो, ये कैसे अद्भुत लीला? बोले ना ना ऐसा ही होगा तो सर दर्द मेरा ठीक होगा। तो गार्गी बैठ गई और गार्गाचार्य जी अपनी सर रख करके सो गए। सोने से पहले गार्गाचार्य जी बोलते गार्गी देखो एक बात है, जब मैं अपनी आप में उठूं तब मुझे मैं उठूंगा, किंतु मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी तकलीफ आए मुझे जगाना नहीं, ये आदेश दे दिया। और गार्गाचार्य जी सो गए। सवेरे बीत गया, दोपहर बीत गया, संध्या आने हो गया। तो गार्गी मन में सोचती है मैं तो ब्राह्मण की पत्नी हूं जिसकी सेवा करूंगी, अगर वो ब्राह्मण ही नहीं रहा तो फिर मैं सेवा कैसे कर सकती हूं? और ऊपर से पतिदेव ने ये बोल रखा है मैं जगाऊंगी नहीं, वो जब जगे कितना, ये कौन सा निधि है? सवेरा भी नहीं गायत्री गया, दोपहर के गायत्री भी जपे नहीं, अभी संध्या गायत्री नहीं जपेंगे तो ब्राह्मण कुल से गिर पड़ेंगे, जगाना पड़ेगा जो भी हो। तो पतिदेव की वृद्धांगुष्ठ लेकर के गार्गी जगाया, पर वृद्धांगुष्ठ पकड़े कैसे? वो तो सोए है गोदी में, हाथ नहीं पहुंचती। चिल्ला चिल्ला कर बोली पतिदेव जग जाओ जग जाओ, देखो आपने सवेरे का गायत्री नहीं जपा, दोपहर का गायत्री नहीं जपा, संध्या चला हो जाएगा तो आप ब्राह्मण नहीं रहोगे, मैं आपकी पत्नी भी नहीं रह सकती, सेवा भी नहीं कर सकती, क्या करूं? जगिए। और क्रोधान्वित होकर के क्रोध के आवेश में आकर के गार्गाचार्य जी जगे। गार्गाचार्य जी बोलते गार्गी मैंने तुम्हें कहा था मुझे नहीं जगाना, क्यों जगाई? बोले प्रभु क्षमा चाहती हूं, सवेरे में गायत्री नहीं जपा सो गए, दोपहर का गायत्री नहीं जपा सोते रहे और संध्या हो गया, अब ना आप ब्राह्मण है ना मैं आपकी सेवा के लायक रहूंगी, इसलिए जगाया, जो करना है करो। बोले अच्छा इसलिए जगाई, मैं गायत्री नहीं जपा? हे सूर्य भगवान रुको, जहां संध्या हुई थी वही सूर्य भगवान को रुकना पड़ा और रुक गए। घर की देखती रही, अरे सूर्य की गति को मेरा पति ने रुक दिया, कितना महान हूं मैं। तो फिर स्नान किए, प्रातः गायत्री जपे, मध्यान्ह गायत्री जपे, फिर सायं गायत्री जपने के बाद गार्गाचार्य जी बोले अब सूर्य नीचे जाओ। तो सूर्य भगवान नीचे टलने लगे, गार्गी लंब खंब होकर के सो गई पति के चरण। बोलती है आज तक तो मैं ये समझती थी आप मेरे पति हो, पर आपने इतना शक्ति दी मुझे पता नहीं था। बोले तभी तो ये किया, गार्गाचार्य जी बोलते हैं। तो कहने करते ये था उन दिनों में ब्राह्मण में ये शक्ति था और परशुराम तो भगवान थे। परशुराम जी को ये मालूम था जमदग्नि ऋषि क्या करने में समर्थ है, तभी उन्होंने पिता का आदेश का पालन किया। शास्त्रों में आता है परम एक गुणी पुत्रो नच मूर्ख सतेरपि एक चंद्र स्तम हंती नच तारागणेरपि। आकाश में बहुत चंद्रमा है, बहुत नक्षत्र हैं, परंतु जब एक चंद्रमा उदय हो जाए सारा नक्षत्र फीके पड़ जाते हैं। उसी प्रकार हमें 100 पुत्र की जरूरत नहीं है, एक पुत्र होना चाहिए जो कुल की उद्धार करे। क्योंकि सुपुत्र कुल दीपक सर्वरी दीपकोश्चंद्र प्रभाते रवि दीपक त्रैलोक्य दीपको धर्म सुपुत्र कुल दीपक। सर्वरी कहते हैं रात्रि के, निशा निशितिनी रात्रि त्रिजामा क्षणदा क्षपा विभावरी तपस्नौ रजनी जामिनी तमी, ये रात्रि के 12 नाम है। तो विभावरी सर्वरी दीपक चंद्र, रात्रि की अंधारा को निकालने के लिए चंद्रमा जब उदय होते हैं वो आलोक के काम करता है, दिया का काम करता है। जिसे दिया जलाना थे अंधारा भागता है, तो जब चंद्रमा की उदय हो जाए तो अंधारा भाग जाती है। और सर्वरी दीपको चंद्र प्रभाते रवि दीपक, प्रभात समय की जो अंधारा है जब सूर्य भगवान उदय होते हैं वो अंधारा दूरीभूत होता है। त्रैलोक्य दीपको धर्म, ये तीन लोग कैसे चलता है, धर्म से आते जात होता है। सूर्य चंद्रमा धर्म के बल पर आते हैं और जाते हैं। जब संसार में धर्म ही नहीं होगा तो सूर्य चंद्र कहां आएंगे। इसलिए प्रत्येक मानव का कर्तव्य है वो धर्म परायण बने। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते शत्रु। धर्म बल जिसका है बड़े बड़े व्याधि भी उसको आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म परायण है। भगवान धर्म के प्रत्यक्ष मूर्ति हैं, और भक्त लोग धर्म परायण होने के कारण भक्तों की हमेशा जय जयकार होता है। सर्वरी दीपको चंद्र प्रभाते रवि दीपको त्रैलोक्य दीपको धर्म सुपुत्र कून है, सुपुत्र अच्छा जो पुत्र है वो कुल की कुल को उज्जवल करता है, कुल की कुल में दिया का काम करता है, कुल की जो बुराइयां हैं उसको नाश कर देता है। इसलिए पुत्र का जय जयकार है, सुपुत्र कुल दीपक। और पुत्र का तीन कर्तव्य है पिता माता के लिए, जैसे परशुराम ने पितृ आज्ञा से मातृहत्या ही कर डाला, भातृहत्या ही कर दी। वो तीन कार्य क्या है, ना वंचन्ते आज्ञा पालनम। भगवान राम की चरित्र में देखिए, पिता ने आदेश दे दिया 14 साल वनवास जाने के लिए, क्योंकि प्रतिज्ञाबद्ध थे। कैसे भगवान राम क्षत्रिय थे, उन्होंने तुरंत दशरथ को बंदी बना सकते थे, जैसे औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां का बंदी बनाया और बनाए हुआ जागा को लेकर के उनको जमुना के उस पार में डाल दिया कि नहीं। ये हमारा भारतीय हिस्ट्री है। भगवान राम क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का देखो ब्राह्मणस्य धनम विद्या, ब्राह्मण का धन होता है विद्या, क्षत्रियस्य धनम रण, क्षत्रियों का जो धन है वो लड़ाई करना है। वणिकायाम रूपम वित्तम, जो नारी अपने शरीर बेच करके अपना पेट पालती है उसकी जो वित्त है धन है अपना शरीर की ब्यूटी। सर्वत्र चरित्र धनम, और सभी जगह पर हम सभी के लिए जो चरित्र है हमारा जीवन चरित्र वो सबसे बड़ा धन है। तो राम भगवान क्षत्रिय थे, उस समय राजपुत्र वो युद्ध करते, दशरथ को बंदी बनाते, फिर नियम सब टल जाता, वो राजा बनते। किंतु भगवान ने इसे नहीं किया, पितृ सत्य का पालन किया और 14 साल के लिए वनवास में जीवन बिताया। तो जो सुपुत्र है वो पिता और माता के आज्ञाकारी पुत्र होता है। जब तक पिता माता जीवित है पुत्र उनके आज्ञा का पालन करता है, और मृता है भरी हो जन्म। जब पिता माता की देहांत हो जाए ज्ञाति कुटुंब वर्ग को बुला करके हरी भोजन कराता है, और गया च पिंड दाने च, और एक बार गया में जाकर के पिता और माता के लिए पिंड दान देता है। त्रिभी कार्य सुपुत्र का, ये तीनों कार्य अच्छे पुत्र के लिए शास्त्रों ने बताया। सर्व तीर्थ मई माता सर्वदेव मय पिता पितरौ मातरौ चैव सर्वत्र पूज्यते। सभी जगह पर पिता और माता का आदर होना चाहिए। परंतु दुख की बात यह है आज ये कलियुग में जो पुत्र लोग हैं विवाह करने के पश्चात बूढ़े पिता माताओं को बहुत कष्ट देते हैं। मैं बहुत जगह पर गया हूँ, इवन इन अमेरिका में अपने कार्य के लिए, क्योंकि दोनों पति पत्नी काम करते हैं बाहर, घर संभालने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कुकिंग करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। पति जाता है सवेरे, पत्नी जाती है शाम को, सप्ताह में एक दिन मिलते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं हो सकता है, पर जीवन ठीक नहीं है। तो घर से अपने बूढ़े पिता माता को बुलाते हैं, और वो पिता माता घर में क्या करते हैं, जब बच्चे उनकी छोटे बच्चे हैं उसको संभालते हैं, नहीं तो कपड़े धोते हैं, नहीं तो कुकिंग करके रखते हैं, मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी, खाना खाएगा। तो कभी कभी वो इतना रोते हैं, बोलते हैं हम तो चार डब्बा में बंद हो गए हैं स्वामी जी, क्या जीवन है। तो पुत्र का इससे कर्तव्य नहीं होना चाहिए, बूढ़ा हो जाए तो हम उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आए, ये वैदिक परंपरा नहीं है। यदि हम अपने पिता माता की सेवा करेंगे, आने वाला दिन में एक दिन पिता हम भी होंगे, हमारा बच्चे होंगे, तो फिर वो हमारा सेवा क्यों करेंगे यदि हमने नहीं किया। इसलिए उदाहरण सेट करना चाहिए, पुत्र को चाहिए पिता माता की अच्छी रूप से देखभाल करें। और माता की सेवा करने से क्या होता है, ना सर्व तीर्थमयी माता, तीर्थ में स्नान करने से जो फल जीव को प्राप्त होता है केवल मां की सेवा करने से वो फल प्राप्त हो जाता है उस पुत्र को, और उससे सर्वदेव मय पिता, और पिता के सेवा करने से देवताओं की स्वीकृति, जो देवताओं की आराधना करने से जो फल प्राप्त होता है वो पिता की सेवा करने से फल प्राप्त हो जाता है। भगवान भी कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। ये शरीर का तपस्या है पिता माता की सेवा करना। पिता और माता आद्य गुरु है, बचपन से ही वो हमें राह दिखाते हैं, इसलिए पिता माता की अनादर नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र 125 साल ये मर जगत में रहे, परंतु जब वो द्वारिका में रहे प्रत्येक दिन राज कार्य में जाने से पहले वो पिता माता के चरण वंदन करके निकलते थे। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जो पिता और माता के चरण वंदन किए बिना वो राज कार्य में चले जाते थे। एक दिन नारद जी ने ये बात को देख लिया। नारद जी ने बोला चतुर्देश ब्रह्मांड के स्वामी ये देवकी और वसुदेव को प्रणाम करके जाते हैं। जाके पहुंच गए देवक और वसुदेव के पास, बोले आप दोनों को पता है कृष्ण कौन है, बोले हमारा बेटा है, बोले नहीं 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 तुम्हारा बेटा ये नहीं है, ये चतुर्दश ब्रह्मांड के स्वामी है, वो प्रणाम करे तुम लेते हो, वो चौक है। नारद जी में पूर्ण विश्वास रहा, देवक और वसुदेव सजाग हो गए। जब भगवान कृष्ण दूसरे दिन आए और प्रणाम किया, तो बोले बेटा प्रणाम नहीं कर, उठो उठो, तुम जगत के पति हो। आज तक पता नहीं था, पर नारद जी ने हमारी आंखें खोल दिया, आज से तुम प्रणाम नहीं करना। तो उस दिन देवकी और वसुदेव भगवान कृष्ण को प्रणाम कर डाले। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, हे माता हे पिता, आप खड़े हो जाइए। दोनों खड़े रहे। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस दिन एक बार नहीं, सात सात बार पिता और माता को प्रणाम किया। वसुदेव और देवकी बोलते हैं, तुमने ये क्या किया बेटा? भगवान बोलते हैं, हे माता हे पिता, तुम पुत्र में भगवान को देख लिया, मैं पिता माता में भगवान को नहीं देखा। ये प्रायश्चित जब एक बार करता था, आपने मुझे कर दिया प्रायश्चित स्वरूप, मैं सात बार प्रणाम आपको वापस दिया। ये भगवान, जिन भगवान के नाम को लेकर के हम जीते हैं, उनकी आदर्श है, तो हम क्यों नहीं करें? अवश्य पिता का जो कर्तव्य है पिता निभाना चाहिए, माँ का जो कर्तव्य है माँ भी निभाना चाहिए। माँ व्यभिचारिणी हो, ऋणकर्ता पिता शत्रु, माता शत्रु व्यभिचारिणी, पत्नी रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु कुपंडितः। जो पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कर्ज करके छोड़ जाए, कर्जा छोड़ जाए, बेटा उसको चुकाए, वो शत्रु का काम किया वो पिता ने, बेटा बेटा की सर के ऊपर बोझा डाल गया। ऋण मैंने किया, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनाय च। ये ऋषि का फिलोसफी है। हा? जितना जरूरत है ऋण कर जाओ, कर्जा कर जाओ, बैंक से लो, इससे लो, उससे लो, करके घी पियो और मस्त रहो। घृतम पिबे जावत जीवे सुखम जीवे ऋणं कृत्वा, फिर क्यों ना भस्मीभूतस्य देहस्य। ये देह तो ऐसे ही मरने वाला है, मरने के बाद किसने देखा काल क्या होगा? पुनरागमनाय च, फिर एक शरीर मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है? क्या ऐसे है? अगर पिता ऋण करे पुत्र को चुकाना पड़ता है, इसलिए पिता शत्रु का काम ना करे और माता शत्रु व्यभिचारिणी। व्यभिचार जैसे आपने ना पढ़ा, व्यभिचार आचार विहीन संस्कार विहीन। और जो माता घर में कम और बाहर समय बिताए, वो घर जल्दी नष्ट हो जाता है। मां घर की लक्ष्मी है, समय घर में बिताना चाहिए ना बाहर। इसलिए शास्त्र कहा माता शत्रु, वो माता उन बच्चों के लिए पूर्ण शत्रु का काम करता है जो घर में कम और बाहर में ज्यादा समय बिताए। व्यभिचारिणी और भार्या रूपवती शत्रु, जिसकी पत्नी बहुत देखने के लिए सुंदर हो, सभी की आंखें उस पर जाता है, आह क्या सुंदर। कभी कभी पति तो इसे सोचते रहता है, अपने मन से दुखी भी हो जाता है। तो बहुत रूपवती पत्नी जिस पति का हो, वो भी एक शत्रु का काम करता है। और पुत्र शत्रु को पढ़ने का, और जब कुल में पुत्र मूर्ख बन जाए वो शत्रु का काम करता है। मूर्खाणाम उपदेशणाम केवलम क्रोधवर्धनम भुजंगाणाम दुग्धपानम केवलम विषवर्धनम। भुजंग कहते सांप को, यदि सांप को हम दूध पिलाएं तो उसमें जहर तो वर्धन हो गई। और जो मूर्ख पुत्र है उसको जब हम उपदेश दें उससे क्रोध वर्धन, उसका क्रोध होता है। हाँ आप मुझे बताएं, आप मुझे सिखाए। कल जब हम किसी कथा में बैठे हुए थे, एक जननी इतनी रो रो के अपने दुख बता रही थी, सुनने लायक था वो दुख। सो कहने का अर्थ है, जो पुत्र को मेधावी होना चाहिए, कन्या को मेधावी होना चाहिए, कन्या पाठ ना पढ़े, ये कौन सा शास्त्र बताया? शास्त्र ने कहा कन्या दोहिता कहलाता है, पुत्र एक कुल का है, कन्या दो कुल की है, एक पितृकुल और एक पति का कुल, दोनों कुल को हित पहुंचाती है। पर वो अनपढ़ गवार होकर बैठे क्यों ना? उसे एजुकेटेड होना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? ये नैरो माइंडेड थॉट है, ये विचार से हमें बाहर आना चाहिए। विद्या सभी का अधिकार है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, विद्या समान नहीं धन, बालके कर उपार्जन। नास्ति विद्या समम चक्षु, नॉलेज के समान, विद्या के समान कोई दूसरा दृष्टि नहीं है। संसार को यदि अविद्या से देखो कुछ और रूप में दिखता है, पर विद्यापूर्ण दृष्टि से संसार को देखो कुछ और उसका भाव है। हम संसार में ही तो रहते हैं, संसार को छोड़ के कहां जिएंगे? इसलिए विद्वान होना, विद्यार्थी बनना बहुत आवश्यक है, चाहे वो कन्या हो चाहे वो पुत्र हो। और जो अज्ञान में जीते हैं, अज्ञानता अंधकार होता है, और अंधकार में हम अपने को नहीं देख सकते तो दूसरे को कैसे देखेंगे? इसलिए तमसो मान ज्योतिर्गमाया, हे भगवान मुझे अंधकार से आलोक की ओर ले जाए। मृत्युर्मान अमृत गमाया, मृत्यु संसार से उठा करके मुझे अमृत की ओर ले जाओ। अमृत की पान करने से क्या होता है? संसार बंधन से मुक्ति मिल जाता है। किसने पूछा ये अमृत का निवास कहां है, अमृत रखा कहां है? बोले अवधौ विधौ वधुमुखे फणिनाम निवासे। अवधि कहते हैं समुद्र को। बोले पूर्व पाक्षण में समुद्र के अंदर से ये अमृत निकला था। तो वैष्णव भक्त कहते हैं होगा, अगर अमृत समुद्र में होता फिर समुद्र रोज गरजता क्यों है, कान को बहरा बनाता है? और प्यासी व्यक्ति जब समुद्र के किनारे जाए पानी पी करके थूक देता है क्योंकि नमक भरा है, फिर अमृत कैसा? अमृत समुद्र में नहीं होता, फिर कहां होता? विधौ, विधु कहते चंद्रमा को, चंद्रमा के किरण बड़ा शीतल देता है, शुभ्र आलोक देता है। बोले होगा, भक्त कहते होगा, पर चंद्रमा में यदि अमृत होता जो चंद्रमा 15 दिन घटता है और फिर 15 दिन बढ़ता क्यों है? और चंद्रमा इतना गोलाकार वस्तु में एक काला थब्बा क्यों है? वो तो पूर्ण शुक्ल होना चाहिए, फिर कालापन क्यों है? उसमें भी चंद्रमा नहीं है। बोले अब मैं जानता हूं। बोले कहां? ना वधु मुखे, वधु मतलब कामिनी स्त्री, ललना कन्या, उसकी अधर में अमृत भरा है। तभी तो सारा संसार उसके पीछे अमृत पीने के लिए। हाय डार्लिंग, विदाउट यू आई कांट लिव वन सेकेंड। और विवाह पति पत्नी को अपनी बाहों पास में लेकर के उसकी अधर को चुंबन करता है, अमृत को पी लेता है। अगर कामिनी के अधर में अमृत है तो पति बूढ़ा होकर के मरता क्यों है और पत्नी रोती क्यों रहती है? वहां भी नहीं, तो फिर है का अमृत। न कंठे सुधा वसती वही विबुधा वदंती। कंठे भक्त की कंठ में अमृत का निवास है। भक्त जब चित्कार करते करके कहता है विष्णु नारायण कृष्ण वैकुंठ विश्चल श्रव दामोदर ऋषिकेश केशव माधव स्वभ दैतारी पुण्यरिकाक्ष गोविंद गरुड़ध्वज पीताम्बर अच्युत सारंगिन विश्वक सेन जनार्दन उपेन्द्र इंद्रावरज चक्र पाणि चतुर्भुज पद्मनाभ मधुरी पुर वासुदेव त्रिविक्रम देवकी नंदन सौरी श्रीपति पुरुषोत्तम वनमाली बलिध्वंसी कंस रात्रि अधोक्षज। वो अमृत भगवत नाम है। वो अमृत का निवास अगर किसी स्थान पर है वो है हमारे भक्त का कंठ, क्योंकि हमेशा वो कृष्ण नाम का चित्कार करता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्णाय कृष्णेति पद्म पुराण कृष्ण कृष्णाय कृष्णेति योमं भज्यति नित्य सह जलं भित्वा यथा पद्म नीरयत्यारयाम्यहम्। जब भक्त कृष्ण कृष्णाय कृष्णेति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ऐसी चित्कार करे, जब वो भवसागर में डूब भी जाए भगवान कहते उसको डूबता हुआ जो काले काले शिखा ऊपर उठे हैं उसको पकड़ करके मैं ऐसे गोलक ले जाता हूं जैसे कि कमल के फूल पंकज पंक से उत्पन्न हो करके समस्त बड़े सागर के पानी को अंदर से निकल करके ऊपर खिल जाता है, ऐसे ही गोलक पहुंचा देता हूं, फिर चिंता किस बात की है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा को नित्य प्रति सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा यदि नित्य प्रति हम श्रवण करेंगे हमारा भक्ति बहुत नष्ट की दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ेगा। हरे कृष्ण बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रोता भक्त वृंद की जय। हरि हरि बोल।